मुगल सल्तनत के बारे में मशहूर है कि वहां हमेशा एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा है, या तख्त या ताबूत, यानी या तो सिंहासन या फिर कब्र। अगर हम मुगल इतिहास को पलटें तो शाहजहां ने न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरियार की मौत का आदेश दिया, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों और दो चचेरे भाइयों को भी मरवाया। यहां तक कि शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने। ये परंपरा शाहजहां के बाद भी जारी रही और उनके बेटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शुकोह का सिर कलम करवाकर भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। कैसी शख्सियत थी शाहजहां के सबसे प्रिय और सबसे बड़े बेटे दारा शुकोह की? मैंने यही सवाल रखा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अवीक चंदा के सामने।
बहुत ही मल्टीफेसेटेड और कॉम्प्लेक्स एक शख्सियत थे, क्योंकि एक तरफ बहुत वार्म हार्टेड थे, जेनरस थे, ही वाज अ कंप्लीट जैसे फैमिली मैन आप अगर कहेंगे, वेरी ड्यूटिफुल सन, वेरी ओबीडियंट सन, और साथ ही साथ सूफी थे। सिर्फ सूफी लीनिंग्स नहीं थे, बट ही वाज अ प्रैक्टिसिंग सूफी, कादरिया जो सिलसिला है उसके साथ उनका ताल्लुक था शायद थे। तो एक तरफ सब ये, और दूसरी तरफ राज शासन बोलेंगे या सियासत बोलेंगे, उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था उनको, और जो मिलिट्री मैटर्स हैं उसमें भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था।
शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो अपने वली अहद को हमेशा सैन्य अभियानों में भेजने से हिचकते रहे और उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने दरबार में रखा।
शाहजहां का भी ये बड़ा दिलचस्प चीज था कि एक तरफ जब औरंगजेब महज 16 साल के हैं तो उनको फौज के साथ भेजा जाता है डेक्कन में, जो उस वक्त बहुत ही हॉस्टाइल था। सिमिलरली मुराद बख्श को भेजा जाता है गुजरात, शाह शुजा को भेजा जाता है बंगाल की तरफ। हालांकि जो सबसे बड़े बेटे हैं वो उनके सबसे अजीज हैं, तो ना उनको कोई जंग का तजुर्बा हो रहा है, ना कोई सियासत का तजुर्बा हो रहा है, ना कुछ भी। वो जैसे बोलते हैं ना पापाज बॉय, वैसे मतलब बिल्कुल अपने ही पास दरबार में बिठा के और सुबह से शाम तक वो जो जो काम में शिरकत फरमा रहे हैं, तो दारा को भी साथ साथ उसी में मौजूद कर रहे हैं। शाहजहां का इतना ज़्यादा इस पर जोर था कि दारा शिकोह ही बनना चाहिए इसके बाद शहनशाह, कि इन द अर्ली 1650s उन्होंने एक अलग सा पूरा इवेंट किया अपने दरबार में और उनको अलग से तख्त पे अपने पास बिठाए और उनको शाही बुलंद इकबाल का खिताब दिया और सबको ऐलान कर दिया कि ये मेरे बाद बादशाह बनने वाले हैं।
28 मई 1633 को एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई, जब शाहजहां के सामने हो रही दो हाथियों की लड़ाई एक दुर्घटना में बदल गई। वहां मौजूद औरंगजेब ने किसी तरह उस हाथी पर काबू पा लोगों की जान बचाई। वहां मौजूद दारा शिकोह इस नजारे को बस दूर से देखते रह गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना ने हिंदुस्तान के तख्त पर औरंगजेब के दावे की नींव रखी। मशहूर इतिहासकार राणा सफी बताती हैं।
दो हाथी लड़ रहे थे आपस में, एक का नाम था सुधाकर, एक का नाम था शायद सूरत। सुधाकर के सबसे पास औरंगजेब थे, दारा शिकोह काफी दूर थे। हाथी जो है जब लड़ते लड़ते एकदम से सुधाकर जो थे और वो बढ़ते हैं औरंगजेब की तरफ, तो औरंगजेब अपने भाले से फिर उसके सर पे मारते हैं। वो इन्हें गिरा भी देता है, लेकिन फिर जब तक के शाह शुजा भी आ जाते हैं और शाह शुजा मारते हैं, पीछे से राजा जयसिंह आ जाते हैं। अब उनका क्या मंशा था, वो क्यों नहीं आगे बढ़े, या उनको लगा कि हो सकता है बात संभल गई है, अब ये सब कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, 15 साल के थे औरंगजेब, उन्हें एक मौका मिला अपनी बहादुरी दिखाने का।
नादिरा बेगम से दारा शिकोह की शादी को मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड से भारत भ्रमण पर आए पीटर मंडी ने अपने लेख में बताया कि शादी में उस जमाने में 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 16 लाख रुपए दारा की बड़ी बहन जहां आरा बेगम ने दिए थे।
ये तो थे सबके फेवरेट, किंग का भी फेवरेट है, जो प्रिंसेस हैं जहानारा बेगम, क्योंकि उस वक्त मुमताज महल गुजर गए थे, तो मुमताज महल की बड़ी ख्वाहिश थी कि दारा शिकोह की शादी अपने ही कजिन نادرہ بیگم سے ہوں, پھر ممتاز محل گزرنے کے بعد جہانارہ بیگم بیکمز لائک جیسے ایمپریس کی طرح ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو چیزیں اور سارے فنڈز ان کے پاس اور بہت سارے انفلوئنس جو ہیں دربار میں اور خاص کر کے اپنے والد کے ساتھ آن آل میٹرز. وہ ہوا اس وقت مغل خاندان میں نہ تو شاہ جہان کا, نہ تو اورنگزیب کا, نہ تو کبھی جا کے شہنشاہ اکبر کا اتنا دھوم دھام سے ہوا, کیونکہ یہاں پہ کیا تھا, جتنے سارے اپنے کو الاؤنس ملتا تھا اس وقت, جیسے جہانارہ کو جو الاؤنس ملتا تھا پورا انہوں نے دے دیا شادی پہ, پھر شاہ جہان نے خود سے دے دیے, اور یہ پروسیشن جیسے چلتا رہا, جیسے پیٹر منڈی نے ذکر کیا ہے کہ رات کے ٹائم کو آپ کو دن نظر آئے گا, اتنا زیادہ روشنی تھا. اور ایک ہسٹورین ہے منیس فاروقی, انہوں نے ایکچولی اس زمانے کے جو سارے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو 2009 کے ڈالر ٹرمز میں انہوں نے کنورٹ کر کے ایک ویلیویشن کیے تھے, تو اس کے مطابق ایسے 45 یا 48 ملین ڈالرز پورا شادی کا خرچہ. تو میرے حساب سے 2009 کا اگر 2019 کریں گے تو جیسے متل کی شادی کے اسی کے آس پاس آئے گا.
دارا شکو کی سارجنک چھوی ایک کمزور یودھا اور ایوگیہ پرشاسک کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یدھ میں بھاگ ہی نہیں لیا. کندھار کے ابھیان میں وہ خود اپنی پہل پر گئے جہاں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا.
جب اورنگزیب اس میں ناکامیاب ہو کے ڈسگریسڈ ہو کے واپس آ جاتے ہیں مغل ٹیریٹری میں, اس وقت دارا شکو خود سے والنٹیئر کرتے ہیں, ان کو کوئی علم نہیں ہے, کوئی جنگ کا تجربہ نہیں ہے, اور شاہ جہان بادشاہ سلامت بڑے خوش, ہاں میرے بڑے بیٹے لے کے آ جائیں گے, اس کی تیاری کرو. مطلب آپ کو حیرانی بھی ہو سکتی ہے اور ہنسی بھی آ سکتی ہے کہ کس طرح سے اس کا پریپریشن کیا جاتا ہے, کہ پریپریشن جب ہوتا ہے تو پورا گولا بارود ہاتھی سامان سب چیز فوج لے کے آتے ہیں, اور یہاں پہ پریپریشن ہو رہا ہے کہ اس کا ایک ماڈل جیسے کلے میں بنا کے دور کی طرف اس کے اوپر بمباری کر دیا, تو کچھ ہی 2-3 منٹ میں وہ دہس نہس ہو گیا, تو بس اور ان کے جو سائیکو فینس ہیں وہ بولنے لگ گئے کہ ہاں یہ تو فتح حاصل کر لیے آلریڈی. یہ انداز سے وہ پھر گئے قندھار کیمپین میں, اور وہاں پہ 2-3 چیز ہوتی ہے. ایک تو ان کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے, پہلی بات. دوسری بات, جو پرشینز ہیں جو انٹرنچڈ ہیں, بہت ہی اچھا فورٹیفائڈ ایک پوزیشن میں ہیں, ڈیفینس کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیسے لڑیں کوئی جانکاری نہیں. اس وقت ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن سے وہ صلاح لے سکتے تھے, جیسے جسونت سنگھ جی ہیں, راجوب سنگھ ہیں, اور کسی سے وہ صلاح نہیں لے رہے ہیں, بلکہ طرح طرح کے کوئی یوگی آ گیا, کوئی تانترک آ گیا, کوئی سادھو آ گیا, کوئی صوفی آ گیا, ان سے مانگ رہے ہیں, اور کوئی آ کے بول رہا ہے اس میں جینی ہیں, کوئی آ کے بول رہا ہے اس میں بھوت ہیں, کوئی آ کے بول رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, اور ان کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, اور آبویسلی کچھ ہوتا نہیں ہے. تو فائنلی جب جنگ چالو ہوتی ہے تو بہت بری طرح سے مغل فوج ہار جاتے ہیں.
شاہ جہاں کی بیماری کے بعد ان کے اتراधिकार کے لیے ہوئی لڑائی میں اورنگزیب ان پر بھاری پڑے. پاکستان کے ناٹککار شاہد ندیم کی بات مانی جائے تو اورنگزیب کے ہاتھوں دارا کی ہار نے ہی بھارت اور پاکستان کے وبھاجن کے بیج بوئے تھے.
ایک طرف اورنگزیب اور مراد بخش کی فورسز ہیں اور دوسرے طرف دارا شکو کے فورسز ہیں, اور مقابلہ ہو رہا ہے. ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا برابری کا مقابلہ ہے کہ اس وقت کسی بھی طرف پلٹ سکتا تھا, اور ایک ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ان کے راجپوت لیڈرز تھے اور چیفٹنز تھے اور رستم خان وغیرہ بھی ان کے فوج میں تھے, مطلب دارا شکو کے فوج میں, یہ ایک طرف سے ان کے جو پہلا لائن ہے اورنگزیب کے اس کو پیئرس کر کے اورنگزیب کے کافی قریب پہنچ جاتے تھے, اور اس وقت اورنگزیب کے پاس ایک چوائس ہوتا ہے کہ وہ ریٹریٹ کرے یا پھر وہیں پہ قائم رہ کے جو دشمن ہیں اس کو سامنا کرے. اورنگزیب بولتے ہیں کہ میرے ہاتھی کو زنجیر بند کر دو, مطلب چاروں پیر جو ہیں ان کے سارے اتنا زنجیر سے نپٹا دو کہ وہ پیچھے بھی نہ ہٹے آگے بھی نہ ہٹے, اور ایسے مطلب اپنے جو بھی بچے کچے فوج ہے ان کو سارے کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک دم خدا اے خدا اے خدا بہادر کی حفاظت کیجیے, اور سب کو بول رہے ہیں کہ یہ وقت ہے اپنے بہادری دکھانے کے لیے. وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس کے بعد سے ان کا پھر پلہ بھاری ہو جاتا ہے, ان کو اتنا حوصلہ ملتا ہے اس ایک جو جیسچر ہیں اورنگزیب کا एकदम इन द थिक ऑफ बैटल, इन द हीट ऑफ बैटल, और दूसरी तरफ दारा शिकोह का देखिए, जिनको कोई तजुर्बा नहीं है एक्चुअल जंग लड़ने में, ये खलीलुल्लाह खान के सलाह पे बात मान लेते हैं कि आप हाथी पे हैं तो आप बहुत अच्छे से दुश्मन के जो तोप हैं या तीर हैं उसका शिकार आप बन पाएंगे, आप ये क्यों रिस्क उठा रहे हैं, आप उतर के घोड़े पे आके सामना कीजिए। और बस बिना सोचे समझे उन्होंने वही मान लिया, और फिर अपने सेना को ये रूमर फैल गया कि खजा खाली है, तो शायद कैप्चर हो गए या फिर शायद मर गए, कत्ल हो गए, तो पूरा तहस नहस मच गया। तो जो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो रहा था तब तक वो एकदम ख़त्म हो जाता है, उनका हिम्मत पूरा टूट जाता है, और उसके बाद जो बैटल है दैट बिकम्स अ राउट।
इस लड़ाई का उल्लेख इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर में करते हैं।
दारा के सैनिकों में ज्यादातर पेशेवर सैनिक नहीं थे, उनमें से बहुत से लोग या तो नाई थे या कसाई या फिर साधारण मजदूर। इस अफरा तफरी के बीच दारा ने धुएं के बादलों के बीच अपने घोड़े को बढ़ाया। साहसी दिखने की कोशिश करते हुए उन्होंने हुक्म दिया कि नगाड़े बजाने जारी रखे जाएं। धुएं के बीच उन्होंने देखा कि दुश्मन अभी भी कुछ दूरी पर है, उसकी तरफ से न तो कोई हमला हो रहा है और न ही गोली चल रही है। दारा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वो औरंगजेब के सैनिकों की पहुंच में आए, उन्होंने उन पर तोपों, बंदूकों और ऊंटों पर लगी हुई घूमने वाली बंदूकों से हमला बोल दिया। इस अचानक और सटीक हमले के लिए दारा और उसके सैनिक तैयार नहीं थे। जैसे जैसे औरंगजेब की सेना के गोले दारा के सैनिकों के सिर और धड़ उड़ाने लगे, दारा ने आदेश दिया कि औरंगजेब की तोपों का जवाब देने के लिए उनकी तोपें भी आगे लाई जाएं। लेकिन उन्हें पता चला कि तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में उनके सैनिक अपनी तोपों को पीछे ही छोड़ आए हैं।
इस लड़ाई में दारा की हार का बहुत करीबी वर्णन मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की जीवनी में लिखा है।
घोड़े पर 4 या 5 मील भागने के बाद दारा शिकोह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हालांकि औरंगजेब के सैनिक उनका पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भी दारा पीछे की तरफ अपना सिर मोड़ते, उन्हें औरंगजेब के सैनिकों के ढोलों की आवाज सुनाई देती। एक समय वो अपने सिर पर लगे कवच को खोलना चाहते थे क्योंकि वो उनके माथे की खाल को काट रहा था, लेकिन उनके हाथ इतने थक चुके थे कि वो उन्हें अपने सिर तक ले ही नहीं जा सके। आखिरकार रात 9 बजे के आसपास वो कुछ घुड़सवारों के साथ चोरों की तरह आगरा के किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके घोड़े थके हुए थे और उनके हाथ में कोई मशाल नहीं थी। पूरा शहर शांत था, मानो किसी का शोक मना रहा हो। बिना कोई शब्द कहे हुए दारा शिकोह अपने घोड़े से उतरे और घर के अंदर घुसकर उन्होंने उसका दरवाजा बंद कर दिया। दारा शिकोह मुगल बादशाह की लड़ाई हार चुके थे।
आगरा से भागने के बाद दारा पहले दिल्ली गए और फिर वहां से पहले पंजाब और अफगानिस्तान। वहां मलिक जीवन ने उन्हें छल से पकड़वाकर औरंगजेब के सरदारों के हवाले कर दिया। उन्हें दिल्ली लाया गया और बहुत बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया।
रोम के जमाने में होते थे कि रोमन जो जनरल्स आते थे और जिनको वो हरा के आते थे, वो सारा कोलोसियम में उनका पूरा चक्कर लगाते थे और सब जलील करते थे उनको कि ये तो हार गया है। ये तो वही वाला सिलसिला उन्होंने किया, क्योंकि लोगों के दिल में, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो दिल्ली हो, ख़ास करके दिल्ली, इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा मोहब्बत था दारा शिकोह के ऊपर, वो तोड़ना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि भाई जितना भरोसा इस पर किया है, जितना प्यार मोहब्बत और इज्जत इसको दिया है, देख ये है इसका हाल।
दारा के सार्वजनिक अपमान का बहुत ही लोमहर्षक वर्णन फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है।
दारा को एक छोटी हथिनी की पीठ पर बिना ढके हुए हौदे पर बैठाया गया। उनके पीछे एक दूसरे हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सिफिर शिकोह सवार था। उनके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए नजर बेग चल रहा था। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे हाल कपड़ों में चल रहा था। उसके सिर पर बदरंग साफा बंधा हुआ था। उसकी गर्दन में ना तो कोई आभूषण था और ना ही जवाहरात। उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन हाथ आजाद थे। अगस्त की चिलचिलाती धूप में उसे इस वेश में दिल्ली की उन सड़कों पर घुमाया गया जहां कभी उसकी तूती बोला करती थी। इस दौरान उसने एक क्षण के लिए भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई और कुचली हुई पेड़ की टहनी की तरह बैठा रहा। उसकी इस हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोगों की आंखें भर आईं।
इसी परेड के दौरान एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। अवीक चंदा बताते हैं।
जब वो मना कर रहे हैं, वो दर्शकों के जो हाथी पे लेके जा रहे हैं, तो एक भिखारी आता है और फिर आके ऐसे बोलने लगता है कि एक जमाना था दारा शिखो, आप ये पूरा जगह के आप ही कस्टोडियन थे, आप ही मालिक थे, और आप बात बात पे मोतियों का हार निशान करते थे, कभी ये देते थे कभी वो देते थे, और वही दारा शिखो आज आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे उनको टॉन्ट करने के लिए नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा मातम ही मना रहा था। और दारा शिखो का उस वक्त उस सारे चीज़ उनका लुट चुका है, पर एक चीज़ तभी भी कायम है, वो उनका डिग्निटी कायम है, और वो उनका जो वार्म्थ और जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट है, वो एक चीज़ उनके पास तभी भी कायम है, जो शॉल था उनका, वही चीज़ उसको दे दिया। तो वो बहुत ही एक मतलब टचिंग मोमेंट था।
उसी के एक दिन बाद औरंगजेब के दरबार में ये तय किया गया कि दारा शिको को मौत के घाट उतार दिया जाए।
नजर बेग और कुछ और उनके जो खुद के मुलाजिम थे, वो छुरी चाकू लेके सलीमगढ़ में जाते हैं। उस वक्त शाम का टाइम है, दारा शिको है सेल में और के साथ सिफिर शिको हैं दोनों। तो उनको ये हमेशा होता था दारा शिको कि ये पोस्ता का पानी पिला के या फिर और किसी तरह से उनको या तो मेंटली डिसेबल किया जाएगा या उनको पॉइजन किया जाएगा। तो उस वक्त थोड़ा सा जो डाल होता है वो बॉयल कर रहे थे, उबल रहे थे, तो इस दरमियान ये लोग भाग के आ जाते, अंदर आ जाते हैं। दारा शिको को उस वक्त ही मालूम पड़ता है, एक जो इंसान को होता है ना कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, ये ऐसा एहसास अचानक से उनको आ जाता है कि ये मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तो सिफी शिको भी बच्चा है, वो डर जाता है और वो अपने वालिद साहब को एकदम झपक लेते हैं। तो ये उनको घसीट के दूसरे कमरे में लेके जाते हैं, जैसे पेन नाइफ होता है उसी साइज़ का एक छोटा सा चाकू दारा शिको ने छुपा दिया था अपने तकिए के पीछे। एकदम लास्ट मोमेंट में वो निकाल के उन पर कूद पड़ते हैं, पर ये तीन चार लोग थे, और एक पकड़ लेते हैं, एक उनको नीचे उसको पुश करके नीचे कर देते हैं, और फिर चाकू छुरी से उनको मार डालते हैं और फाइनली उनको बिहेट कर देते हैं।
दारा शिको के कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। उस समय वो अपने किले के बगीचे में बैठे हुए थे।
उनके सिर जो हैं वो धो के औरंगजेब के पास पेश किया जाता है, क्योंकि औरंगजेब को जब दारा कैप्चर भी हुए तो उनको किसी तरह मतलब यकीन भी नहीं हो रहा था कि हाँ सही में दारा कैप्चर हो गए, सही में दारा मर गए। तो हर वक्त में उनको प्रूफ चाहिए हो रहा था कि ऐसा तो नहीं कि इसके नाम पे किसी ने दारा को छिपा के मतलब रेस्क्यू करके कहीं और लेके गए, तो उनका सर चाहिए।
औरंगजेब इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगरा के किले में कैद अपने पिता शाहजहां को एक तोहफा भिजवाया। इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा।
आलमगीर ने अपने लिए काम करने वाले किन्नर एतबार खां को शाहजहां को संदेश भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तश्तरी को भेज रहा है, जिसे देखकर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। पत्र को देखकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां बोले, भला हो खुदा का कि मेरा लड़का मुझे अभी तक याद करता है। उस वक्त उनके सामने ढक्कन से ढकी एक तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने उसे खोला तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि तश्तरी में उनके सबसे बड़े बेटे दारा का सिर रखा हुआ था। वहां मौजूद औरतें ये दृश्य देखकर जोर जोर से विलाप करने लगीं। उन्होंने अपने सीने पीटने शुरू कर दिए और जेवर उतारकर फेंक दिए। शाहजहां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा कि उन्हें वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। दारा का बाकी का धड़ तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के प्रांगण में दफनाया गया। उनका मानना था कि जब भी शाहजहां अपनी पत्नी के मकबरे की तरफ देखेंगे, उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है।
दारा के शव का अंतिम अपमान होना अभी और बाकी था। उनके सिर से अलग हुए धड़ को एक बार फिर हाथी पर रखकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया।
जो हेडलेस बॉडी आप जिसको कहेंगे, वो दोबारा परेड कराया जाता है पूरा दिल्ली में, और लोग एकदम कूद पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, और लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर आंखों के सामने दिख रहा है कि ये खासा हो गया है।
आज दारा शिको की मौत के 361 साल बाद उनकी विरासत को अंगीकार करने की मुहिम शुरू हुई है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर दारा शिकोह की हत्या न की गई होती तो क्या भारत का इतिहास अलग होता?
हाल ही में सितंबर 10 के आसपास यहीं पे दिल्ली पे दारा शिकोह पे स्पेशल एक सिंपोजियम हुआ था और वहां पे ये कहा गया था दारा शिकोह शुड बी सेलिब्रेटेड एज एन एम्बलम ऑफ इंडियननेस और हर एक को दारा शिकोह के बारे में जानकारी होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं इस चीज में सहमत हूँ, हालांकि एम्बलम ऑफ इंडियननेस आप नहीं कह सकते क्योंकि इंडियननेस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड तो 17 सेंचुरी में नहीं आया था, वो तो 19 सेंचुरी के बाद में ही आया था। अगर दारा शिकोह के लाइफ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जो प्रिंसिपल फिलोसफी है वो मजमा उल बहरीन वाला, उसको तो हम मानना चाहिए। वो अगर मान नहीं रहे हैं, चाहे अयोध्या के डिस्प्यूट आप देख लीजिए, चाहे अभी भी जो डिसरप्शन है पूरे शहर में सीएबी को लेके, वो अगर आप देख लेंगे, वो तो दारा शिकोह के बेसिक जो फिलॉसफी था उसी के खिलाफ है। तो अगर दारा शिकोह को सही में उनका लाइफ और उनका लेगेसी और उनका सोच को सेलिब्रेट करना चाहिए तो शुरुआत वहीं पर करना चाहिए।
रेहान पटेल, बीबीसी दिल्ली।